SBS हिंदी। उस्ताद शाहिद परवेज जी नमस्कार।
नमस्कार
उस्ताद जी, आप ऑस्ट्रेलिया के टूर पर हैं और आपने गायकी में भी महारत हासिल की और सितार में भी। आप इटावा घराने से हैं, छठी पीढ़ी के सितार वादक, तो मेरे मन में उत्सुकता है कि इटावा घराने के सितार में क्या कोई अलग बात है?
देखिए, जिस तरह से हर फूल की खुशबू होती है, उस तरह हर घराने की अलग फ्लेवर और अलग बात होती है
जी।
ज्यादातर तो उसका ताल्लुक है कि अगर आप सुनेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे अल्फाजों में बयान करने में ये मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से आप महसूस करते हैं कि जब आप कोई गाना सुन रहे हो
जी,
ये हमारे घराने की खासियत है कि वो गाने के करीब लगता है बहुत
जी। आपने कहा कि जिस तरह से हर फूल की खुशबू अलग होती है, हर गाने की एक उसको महसूस करने का अंदाज अलग हो जाता है और हर घराने में कहीं ना कहीं अंतर होता है। संगीत तो हमारा रागों पर आधारित है और रागों में भी अलग अलग राग हैं। क्या अलग अलग गुरुओं से जब कोई संगीत सीखता है तो रागों को सिखाने में भी क्या कुछ अंतर हो सकता है?
नहीं, राग जो होता है ना, वो उसके एक उसूल और एक नियम होते हैं, उसके स्वर होते हैं, उसका एक रस होता है
जी।
वो आप किसी भी गुरु से सीखेंगे तो वो उसके जो राग की खासियत है वो तो एक ही तरह से बताएंगे
जी।
लेकिन राग के बारे में हर कलाकार की एक अपनी पर्सनल सोच भी होती है। जिस तरह से अगर जैसे हमारे गुरु ने हमें ये बताया था कि अगर बेटा राग सीखना है तो 4-5 अलग कलाकारों के राग सुनो।
अच्छा।
उसमें जो कॉमन है वो राग है और जो चीज कॉमन नहीं है वो उनकी सोच है, ताकि आप इस दोनों चीजों को अलग कर सकें
जी। तो क्या जी,
जब आप गुरु से राग के बारे में सीखते हैं तो गुरु राग तो सिखाते हैं, राग तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, बल्कि राग तो सुन के भी सीख सकते हैं, लेकिन गुरु से ये होता है कि राग को किस तरह से देखना है वो नजर गुरु देता है
जी। तो जिस तरह से संगीत में समय के साथ साथ परिवर्तन आता जा रहा है, नए नए प्रयोग होते जा रहे हैं, तो क्या रागों का भी कोई आगे विकास होता जा रहा है? राग भी कहीं से कहीं जा रहे हैं?
देखिए, जो हमारा संगीत है
जी,
और जो कुछ लोग ऐसा समझते होंगे शायद कि जैसे ट्रेडिशन में बंधा हुआ रहने से आप नई बातें नहीं कर सकते, नया काम नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेशन आ जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ट्रेडिशन के एक बाउंड्री है, राग की एक बाउंड्री है, क्लासिकल म्यूजिक की एक बाउंड्री होते हुए भी इतनी गुंजाइश है कि आप उसमें रोजाना नया काम कर सकते हैं, उस बाउंड्रीज को भी आप बढ़ा सकते हैं
जी, यानी प्रयोग किए जा सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, और होते ही रहे हैं और हो रहे हैं।
तो क्या उसी से ही नए रागों के नाम आ जाते हैं?
राग को नया राग बनाना या नया राग को कंपोज करना इससे ज्यादा जरूरी है कि जो हमारे नए पुराने राग है उन्हीं की नई शक्ल लाना।
जैसे
उसके बारे में अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो आपको उसके बारे में ज्यादा मालूमात होगी और आप उसी की तस्वीर अलग अलग तरीके से बनाएंगे, वो एक नई बात होगी।
यानी अलग अलग रागों के मिश्रण से भी एक नया राग तो निकलता है, लेकिन उस मिश्रण में भी कोई नई बात डाल दी जाए तो वो एक प्रयोग ही बन जाएगा।
ऐसा भी हुआ है कि कई रागों को जैसे मिला के एक राग बना तो वो एक नई खुशबू बन जाती है
जी। तो आपने भी इस तरह का कोई प्रयोग किया है, कोई नया राग बन गया हो आपसे?
किया है एक बार ऐसा।
अच्छा।
एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास ऐसा वक्त आया मुझे बजाना था कि ना ही वो रात थी ना ही वो सुबह थी, तो उस वक्त मैंने सोचा कि अभी ये तो ना रात है और ना ही सुबह है, तो मैंने एक रात का और एक सुबह का राग का कॉम्बिनेशन बनाया। तो रात का राग में भिन्न षडज लिया और सुबह के राग में ललित लिया और दोनों को मिला के भिन्न षडज का नाम दिया उसको।
अच्छा।
तो उस तरह से एक नया कॉम्बिनेशन बना। तो राग नया कंपोज करना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बल्कि ज्यादा बड़ी बात माना जाता है कि जो पुराने रागों को नई शक्ल कैसे दी जाए, नयापन उसमें पॉसिबल है और वो बहुत लोगों ने किया है
जी। आपके पिता भी सितार वादक थे और लेकिन वो फिल्म उद्योग के साथ में जुड़े हुए थे और कई फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है 50 के दशक में। इसके साथ उन्होंने खयाम साहब के साथ मिलकर भी काम किया
जी।
और मैंने सुना है कि उनको शर्मा जी और वर्मा जी कहा जाता था।
जी, जब खयाम साहब और मेरे पिताजी साथ में म्यूजिक देते थे तो शर्मा जी और वर्मा जी के नाम से किया उन्होंने।
आपके मन में क्या कभी कोई ऐसा विचार नहीं आया कि फिल्म उद्योग के साथ भी जुड़ा जाए?
दरअसल ऐसा है कि मैं कोई चीज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये ज्यादा मानना है कि कोई भी एक चीज में इंसान अगर रहे तो उसको ज्यादा इंसाफ दे सकता है, उसके साथ ज्यादा इंसाफ होता है। इसलिए मैं अपने म्यूजिक के साथ ही जुड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने ख्याल से और अपने मन से मतलब खुला हुआ हूँ, ओपन हूँ कि कभी कोई मौका आएगा तो उसमें मुझे कोई झिझक नहीं है या कोई ऐतराज नहीं है।
जी, तो हो सकता है कि भविष्य में कभी हम आपके द्वारा कंपोज किए हुए फिल्मी गाने सुन सकें, क्योंकि उसमें एक नई बात रहेगी, आपकी अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो और गायकी का जो आपका लहजा है वो उसमें अलग तरह से हमें सुनाई दे भी सकता है। आप मानते हैं गुरु शिष्य परंपरा को, आपका ये कहना है कि गुरु शिष्य परंपरा ही सच्चे तौर पर संगीत सिखा सकती है, तो यहाँ पर
अगर, जी, अगर कायदे से सीखना है और आगे तक जाना है तो यही सही तरीका है। वैसे सीखने के आज तो बहुत सारे तरीके निकले, लेकिन अगर आपको उसमें कुछ करना है, संगीत में एक संगीतकार बनना है, तो गुरु शिष्य परंपरा से ही उसको सही तरह से सीखा जा सकता है।
जी, तो हमारे सुनने वालों को जो इस समय संगीत की दुनिया में या तो कदम रखने जा रहे हैं या पहले से ही संगीत की दुनिया में कुछ नए नए प्रयोग करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या सलाह देंगे उनको?
यही सलाह दूंगा कि जो भी संगीत में आप जा रहे हैं, जिस लाइन में भी संगीत के, उसमें बहुत सिंसियर रहें और थोड़ा सा अगर संगीत से प्यार भी करें तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा।
आप ऑस्ट्रेलिया के टूर पर हैं और रविवार को आपका मेलबर्न में कॉन्सर्ट भी है, और आज इस समय आपके साथ तबला वादक हिंडोल मजूमदार भी मौजूद हैं, तो आप हमारे सुनने वालों के लिए कुछ सुनाएंगे?
जी जरूर।
क्या बात है, आपने तो माहौल यहीं पर हमारे सुनने वालों के लिए बना ही दिया है। इसी तरह से आप हमें अपने संगीत से मनमोहित करते रहिए, आप और सफलता प्राप्त करते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके विचार हमें बताएं, SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।